समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज़, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द न्यूज़ हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू इन माले।
संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित।
इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल इमारत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मौत।
डेथ टोल इन थाई कैम्बोडिया क्लैशेस राइजेस टू 14। इंडियन एम्बेसी इन थाईलैंड इश्यूज अ ट्रैवल एडवाइजरी अर्जिंग इंडियन टूरिस्ट टू रिमेन विजिलेंट। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India's soft power diplomacy with Maldives. Well, Prime Minister Narendra Modi has arrived in Male, Maldives, on the second leg of his two-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was accorded a guard of honour at Republic Square, Male. A 21-gun salute was also given to Mr. Modi. In a welcome ceremony, Maldivian children presented cultural programs. Later, Prime Minister signed a visitor book at the President's house. Now, both the leaders will hold discussion on various bilateral issues. And this marks the Prime Minister's third visit to Maldives and the first visit by a head of state to Maldives during the presidency of Dr. Mohamed Mouizou. And in a special gesture, President of Maldives, Dr. Mohamed Mouizou, received the Prime Minister at the airport. And the Prime Minister is deeply touched by this gesture of President Mouizou. He said that India-Maldives friendship will scale new heights of progress in the times to come.
अभिषेक, मालदीव के साथ भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति बहुआयामी रही है, जिसमें सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक विकास और स्वास्थ्य सेवा सहायता, क्षमता निर्माण, पर्यटन तथा कूटनीतिक और रणनीतिक जुड़ाव शामिल है। ये संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत भी शामिल था। भारत के पश्चिमी तट से मालदीव की निकटता और हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र के रूप में मालदीव की स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व प्रदान करती है।
Yes, and India has a very preeminent position in the Maldives with relations extending to virtually most areas. And the importance of India's strategic role in Maldives is well recognized, with India being seen as a net security provider. Maldives occupies a special place under Neighborhood First foreign policy of India, which aims to bring stability and prosperity in the Indian Ocean region. Also, both the nations contribute to the India-led security and growth for all in the region, that is Sagar Vision.
ऐतिहासिक रूप से भारत ने राष्ट्रीय विकास से लेकर सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तक विभिन्न पहलुओं में मालदीव का निरंतर समर्थन किया है। भारत ने दैनिक आवश्यकताओं से लेकर शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा, जिसमें कोविड-19 टीकों की आपूर्ति भी शामिल है, तक मालदीव को सहायता प्रदान की है। जब हम मालदीव में भारत की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं अभिषेक, तो प्रवासी समुदायों, कला, भोजन और मनोरंजन के माध्यम से भारत की उपस्थिति ने दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों पर एक उल्लेखनीय और दीर्घकालिक छाप छोड़ी है।
Yes, absolutely. And the Indian Cultural Center in Male promotes bilateral cultural linkages and awareness between India and Maldives. by organizing cultural programs, cultural seminars, workshops and training, engaging Indian-based gurus, professionals and trainers for yoga, Hindi and Tamil language, and in performing arts such as Indian classical, vocal music and dances, and director of Male's Indian Cultural Center, Ms. Manjishtha Mukherjee Bhatt, shared details exclusively with Akashvani.
So the Indian Cultural Center under the High Commission of India and Maldives, we come directly under the ICCR, the Indian Council for Cultural Relations, Ministry of External Affairs. This has, it was conceptual. It came into being in 2011. And since the last couple of years, we have been doing a lot of activities. The activities have really gone up in terms of cultural exchange programs and collaborations. So we do a lot of collaborations with local cultural institutions and bodies. And we also liaise with the Indian diaspora members here in propagating and promoting Indian culture. So the activities of the cultural center include, language classes and conceptualization and curation of events that are both in-house and outreach events. So we venture out of Male, we venture out of Indian Cultural Center, and we do events outside as well. The Tamil members under the Indian diaspora is maximum here. So we give Tamil classes in the Indian Cultural Center. We are doing Hindi classes by an Indian member of the Indian diaspora, a lady from North India. We also have music classes in Indian music.
1-4 मई तक मुंबई में आयोजित वेब्स शिखर सम्मेलन में मालदीव के कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र माले की निदेशक सुश्री मंजिष्ठा मुखर्जी भट्ट इस पे और जानकारी दे रही हैं।
One of their artists, Nasu, he had already performed for us with the Indian Cultural Center before and for one of our Independence Day events. And we are very closely working together. We just celebrated the World Music Day on 30th June after they got back from India following their huge success. And this was very well taken by the audience.
Yes, and let's now tell our listeners how through different sectors, India has made deep impact through its track to diplomacy or its soft power.
और अभी हम अगर पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो मालदीव की आर्थिक रीढ़ पर्यटन है। आज ये देश भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। व्यापारिक संबंधों के अलावा भारत मालदीव का प्रमुख पर्यटक स्रोत बना हुआ है। भारतीय पर्यटकों के लिए मालदीव के लोकप्रिय स्थलों में माले शहर, माफूशी द्वीप, वाधु द्वीप और बनाना रीफ शामिल है। ये स्थान सांस्कृतिक अनुभवों, खूबसूरत समुद्री तटों और रोमांचक जल क्रीड़ा गतिविधियों का मिश्रण प्रदान करते हैं। और अभिषेक, अगर हम बात करें तो जब भी हम अपने हॉलीडेज प्लान करते हैं तो उसमें मालदीव्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी लिस्ट में रहता है, और कपल्स के लिए, जोड़ों के लिए तो ये बहुत ही फेवरेट स्पॉट रहता है।
Absolutely, now Maldives is once again a very sought after destination. And when we talk about trade, in April 2025, India approved the highest ever quotas for essential goods exports to the Maldives, reaffirming its commitment to the welfare of its maritime neighbor. Trade between the two nations has grown substantially, and in 2023, bilateral trade stood at $548 million, and this surge was driven by the launch of a dedicated cargo vessel service in September 2020 and several lines of credit LOC projects initiated since 2021.
फरवरी 2022 में भारतीय व्यवसायिक यात्रियों के बीच वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति ने व्यवसायिक जुड़ाव को और बढ़ावा दिया। भारत मुख्य रूप से मालदीव को दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान, सीमेंट, कृषि उत्पाद और निर्माण सामग्री निर्यात करता है। मालदीव से भारत को शुल्क मुक्त टूना निर्यात अगस्त 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य द्वीपीय राष्ट्र के समुद्री खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
Yes, and India provides significant healthcare support to Maldives through medical infrastructure and services, and India has become the preferred destination for Maldivians seeking specialized medical treatments and surgeries.
मालदीव में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में देखा जाता है, जो भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति के लिए लाभकारी है। धन प्रेषण, निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से भारतीय प्रवासी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
Yes, and also Akarshita, through education sector, India has been a traditional partner for the Maldives in human resource development across sectors for decades, and several Maldivian youths acquire their higher education in Indian universities every year, and Indian teachers are popular in Maldivian schools across islands for decades.
और अभिषेक, अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसियों की मदद करने में हमेशा आगे रहता है। और अगर हम इसकी बात करें तो भारत ने 2004 की सुनामी और दिसंबर 2014 में माली में जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता करने में प्रथम भूमिका निभाई थी। इन घटनाओं ने किसी भी अन्य देश की तुलना में संकट के समय मालदीव की सहायता करने में भारत की निकटता और क्षमता के लाभों को स्थापित किया है और मालदीव की सरकार और जनता द्वारा इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
Yes, absolutely. And India's swift dispatch of 30,000 doses of measles vaccine in January 2020 to prevent an outbreak in the Maldives and India's rapid and comprehensive assistance to the Maldives during COVID-19 pandemic further reinforced India's credentials of being the first responder.
भारत मालदीवियन राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF को सबसे अधिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अभिषेक, हम बात कर रहे हैं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और अगर हम देखें तो MNDF के अधिकारियों को भारत में विभिन्न रक्षा अकादमियों जैसे NDA, IMA, OTA, INA आदि में प्रशिक्षित भी किया जाता है, और MNDF भारतीय रक्षा बलों के साथ विभिन्न संयुक्त गतिविधियों में जैसे संयुक्त गश्त, संयुक्त अभ्यास, मादक द्रव्य विरोधी अभियान, समुद्री सवार कार्यक्रम, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, साहसिक शिविर, नौकायन रिगाटा आदि में भी भाग लेते हैं। तो अभिषेक, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया उभर रहा है, जिस तरीके से हमारी जो संस्कृति है वो और भी देशों में जैसे मालदीव है वहां पे जो प्रवासी हैं उनके द्वारा पहुंचाई जा रही है और जिस तरीके से हमारा आदान प्रदान हो रहा है वो भी काफी उल्लेखनीय है।
एब्सोल्युटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन आल्सो एक्सटेंड्स टू द एरियाज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेस, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, gifting of hardware and infrastructure development. And so with that, Akarshita, we conclude our discussion on India's soft power diplomacy with Maldives.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
In Kerala, the initiative of a college to enroll all its students in central government flagship scheme PM Suraksha Bima Yojana is becoming a model for other institutions. We have more from a correspondent from Thiruvananthapuram.
Marcus Arts and Science College in Malappuram District, Kerala has taken a commendable step to ensure enrollment of all its graduate and postgraduate students under the Government of India's flagship insurance scheme, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. This initiative was launched during an awareness program jointly organized by the Palakkad Field Office of the Central Bureau of Communication and Malappuram District Lead Bank at the college campus. As a first step, arrangements were made to open new savings bank account for students who do not currently hold active ones. College authorities have stated that nearly 700 students will be enrolled within the next 2 days. M. Smithy, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और आइए अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार को बौद्ध धर्म और संस्कृति को लेकर एक नई सौगात इस महीने के अंतिम सप्ताह में मिलने वाली है। वैशाली जिले में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन 29 जुलाई को होगा। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट।
बिहार के वैशाली जिले में नवनिर्मित भगवान बुद्ध के दर्शन और ज्ञान का प्रतीक यह संग्रहालय सह स्तूप अपने आप में अनूठा होगा। यह ऐतिहासिक स्मारक वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। 72 एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस भव्य परिसर को 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यह स्थल ऐतिहासिक पुष्करणी तालाब और मड स्तूप के समीप स्थित है। संग्रहालय के प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन कलश स्थापित किया जाएगा, जो 1958 से 1962 के दौरान खुदाई में प्राप्त हुआ था। यह स्मारक का प्रमुख केंद्र बिंदु होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर के बाद यह राज्य में बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख स्मारक होगा। उद्घाटन समारोह में चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, वियतनाम समेत 15 बौद्ध देशों के भिक्षुओं के शामिल होने की संभावना है। पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित यह स्तूप राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थरों को जोड़कर विशेष तकनीक से बनाया गया है। यह संरचना आधुनिक और भूकंप रोधी तकनीकों से सुसज्जित है। परिसर में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, विजिटर्स केंद्र, संग्रहालय ब्लॉक, एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई है। ओडिशा के कलाकारों द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा इस स्थल की विशिष्ट पहचान होगी। यह स्तूप न केवल वैशाली जिले को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर प्रतिष्ठित करेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन, संस्कृति और रोजगार को भी एक नई दिशा देगा। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
In Ladakh, as part of the 26th Kargil Vijay Diwas commemorations, a solemn and emotionally resonant event was held today at Lamuchan Viewpoint in Dras. We have more from a correspondent.
The ceremony began with the hoisting of the national flag by the Flag Foundation of India in the presence of Lieutenant General Hitesh Barla, General Officer Commanding 14 Corps, who served as the chief guest. On this occasion, Major General Ashim Kohli, retired CEO of the Flag Foundation of India and a Kargil War veteran who fought in the Kalubar sector, shared his reflection and paid rich tribute to the martyrs. He described this flag hoisting as the most memorable of his career, noting the visibility of iconic war sites such as Tiger Hill, Bhatra Top and Tololing from the Lamochan Point. He also briefed the gathering about the activities of the Flag Foundation of India, important aspects of the Flag Code of India, and presented a souvenir to the chief guest. The event also featured the facilitation of Team Stringmo, a group of young female artists from Kargil, led by mentor Sajjad Hussain Bob, for their effort in spreading patriotic spirit through art and painting. Later, Lieutenant General Hitesh Barla honored the Veer Naris and next of kin of Kargil martyrs in a deeply moving tribute to the families who have borne the ultimate sacrifice for the nation. Later in the evening, series of programs will continue today and tomorrow as part of the 26th Kargil Vijay Diwas. For Parikrama, this is Anayat Ali from Lamochan Dras, Kargil.
A drone-launched precision-guided missile has been successfully test-fired by the Defence Research and Development Organisation, DRDO, at a test range in Andhra Pradesh. Defence Minister Rajnath Singh informed over social media today that the flight trials were carried out in Kurnool. We have more from a correspondent.
The 12.5 kg fire and forget air-to-surface missile is powered by a compact dual-thrust solid propulsion unit, enabling it to reach a maximum range of 4 km during daytime operations and 2.5 km at night. It also incorporates a two-way data link for communication and offers multiple warhead options to engage a variety of static and moving targets. Designed, developed and tested by DRDO, the ULPGM V3, also referred to as ULM-ER Extended Range Variant, is an advanced version of DRDO's UAV-launched precision munition and features passive homing using an imaging infrared seeker, allowing for accurate engagement in both day and night conditions. Henry for Akashvani News, Vijayawada.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
In cricket, England were 280 for 2 in the first innings against India on day 3 of the fourth test of the Anderson Tendulkar Trophy at Old Trafford in Manchester when reports last came in. Host England resumed the innings today at the overnight score of 225 for 2. India were all out for 358 in the first innings yesterday. Currently, Indian team is trailing 1-2 in the 5-match test series.
भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने कल रात जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज में चीन की ली तिंगजी को हराया। रैपिड और ब्रिज फॉर्मेट में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल टाई ब्रेक मुकाबले में हम्पी ने तिंगजी को 5-3 से हराया। कोनेरू हम्पी का अगला मुकाबला स्वदेश की ही दिव्या देशमुख से होगा। हम्पी ने लगातार दूसरी बार कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। ये दूसरी बार है जब दो भारतीय खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफल रही हैं।
एंड मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट सेक्शन।
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
रिमेम्बर नेशनलिस्ट स्कॉलर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, हु वाज बोर्न ऑन जुलाई द 25th 1894 in Jawahi village, Balia district of Uttar Pradesh.
He is considered to be the most authoritative and accepted scholar of the Saint tradition and helped in revitalizing the Indian civilizational ethos in the times when the country was fighting against the British imperialist regime.
Educated at Allahabad and Varanasi University, Parashuram was a lawyer by profession, but had a keen interest in spiritual literature. He was a scholar of many dialects of Sanskrit and Hindi. He was a supporter of free thinking and evolutionary theory in literature. His life was devoted to the welfare of humanity.
In his books, Bhartiya Sahitya Ki Sanskritik Rekhaen and Sant Sahitya Ki Parak, Parshuram gave place to the saints of Sanatan sect as well as the Sufis, worshippers of Sagun and Nirgun Bhakti streams, Nath Panthis and saints belonging to the sect of Jangam Jogdas. In his book, Uttar Bharat Ki Sant Parampara, Acharya Chaturvedi considered Mahatma Gandhi to be the last saint.
Acharya Parashuram Chaturvedi died on the 3rd of January 1979. We also remember martyr Shridev Suman. He was born on the 15th of May 1915 in Tihri, Garhwal, Uttarakhand. Shridev Suman took an active part in the Salt Satyagraha of 1930. He became a member of the Standing Committee of Lok Parishad in 1936.
A prolific writer, he wrote on the socio-political issues of Tihri Garhwal state. Shridev Suman also participated in the Quit India movement in Garhwal division in 1942, for which he was arrested twice and put behind the bars. He was arrested again and imprisoned in the Tihri State Jail on the 13th of December 1943, where he died in the jail on the 25th of July 1944.
We also remember nationalist M. Alagappa Manikavellu Naikar, who died on the 25th of July 1996.
After independence, Manikavellu founded the Commonweal Party and served as the Minister of Revenue for the Madras state. He also served as a member of the Rajya Sabha from 1962 to 1964. During the 1964-1970, he was the chairman of the Tamil Nadu Legislative Council. Till his death in 1996, M.A. Manikavellu continued to serve the nation.
We also remember martyr Hriday Shah, Chulkan Lodi, Lal Dulare Lal, who belonged to Madhya Pradesh. They took active part in the First War of Independence in 1857. They were caught by the British troops during an encounter and charged with desertion and mutiny. Hriday Shah, Chulkan Lodi, Lal Dulare Lal was sentenced to death and executed by hanging on the 25th of July, 1857. We salute the brave martyrs.
Yes, and on to some business news. Equity benchmark indices, the Sensex and Nifty, closed in the red for a second consecutive session today, weighed down by mixed global cues. Investor sentiment remains subdued amid continued selling by foreign institutional investors and lingering global trade uncertainties. The 30-share BSE Sensex tumbled 721 points or 0.90% to close at 81,463. The NSE Nifty 50 also slipped sharply, losing 225 points or 0.90% to end the session at 24,837. And now continuing our section of greats who are associated with today's date, Samuel Taylor Coleridge passed away on this day in 1834. He was an English poet, literary critic, philosopher and theologian who was the founder of the Romantic movement in England and a member of the Lake Poets with his friend William Wordsworth. He also shared volumes and collaborated with Charles Lamb, Robert Southey and Charles Lloyd. He wrote the poems The Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan, as well as a major prose work, Biographia Literaria. Coleridge coined many familiar words and phrases, including Akarshita, the phrase suspension of disbelief.
और अभिषेक आज प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक बाबूराम इशारा की पुण्यतिथि है. वे किशोर उम्र से ही भागकर मुंबई आ गए थे. बाद में वे फिल्म से जुड़े और अनेक छोटे मोटे काम किए और निर्देशक को सहयोग देने की भूमिका तक पहुंचे. उन्होंने बासु भट्टाचार्य के अलावा दुलाल गुहा को निर्देशकीय सहयोग भी दिया। अपनी फिल्मों में नए लोगों को ब्रेक देने वाले बीआर इशारा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म एक नजर का निर्देशन भी किया। उनकी प्रमुख फिल्में रही हम दो हमारे दो, चेतना, चरित्र, औरत आदि। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म चेतना से ये गीत।
Yes, and we are also remembering Edward James Corbett, who was born on this day in 1875. He was an Anglo-Indian hunter and author. He gained fame through hunting and killing several man-eating tigers and leopards in northern India, as detailed in his best-selling 1944 memoir, Man-Eaters of Kumau. In his later years, he became an outspoken advocate of the nascent conservation movement. Born in Nainital, Corbett explored and hunted in the jungles of Indian childhood. He shot his first man-eater in 1907 and continued to hunt and kill such animals over the next four decades. Animals such as the Champawat tiger, the leopard of Rudra Prayag, and the Panar leopard had taken hundreds of victims in the divisions of Kumau and Garhwal before their deaths at Corbett's hands. Man-Eaters of Kumau, which details several such hunts, became an international bestseller, and it was followed by several other books and was adapted into a 1948 Hollywood film. Corbett increasingly disdained what he saw as the rapacious extermination of India's forests and wildlife, and fervently promoted wildlife photography as an alternative to trophy hunting. He played a major role in the creation of India's first wildlife reserve in 1934, and it was renamed Jim Corbett National Park after his death.
आज भारतीय यांत्रिक इंजीनियर मनमोहन सूरी की पुण्यतिथि है। उन्होंने सूरी ट्रांसमिशन का आविष्कार किया था। ये एक हाइड्रोमैकेनिकल ट्रांसमिशन यूनिट है जिसने डीजल इंजनों की दक्षता बढ़ाने का कार्य किया। इस तकनीक को 11 देशों में 36 पेटेंट विनिर्देशों के लिए जाना जाता है। मनमोहन सूरी को वर्ष 1961 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया।
James Martin Lefferty was born on this day in 1985. He's an American actor, director and producer. He's best known for his portrayal of Nathan Scott on the WBCW teen drama television series One Tree Hill.
आज उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता गोदावरीश मिश्र की पुण्यतिथि है। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां तथा जीवन चरित्र आदि लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुसुम, कलिका, किसलय, आलेखिका, कवितायन, चैनिका, गीतायन, गीति, गुच्छ आदि। भारतीय साहित्य अकादमी ने उन्हें उनके योगदान के लिए उनकी आत्मकथा को पुरस्कृत भी किया।
जीवानिल्डो वियरा डिसूजा वाज बोर्न ऑन दिस डे 1986, आल्सो नोन एज हल्क। ही इज अ ब्राजीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हु प्लेज एज अ फॉरवर्ड फॉर एटलेटिको मिनेरो। After starting out professionally with Vitória and then playing 3 years in Japan, he played several seasons in Portugal with Porto, winning 10 titles, including the 2010-11 UEFA Europa League and 3 national championships. He was crowned the league's top scorer once, and in 2012 he joined Russian Premier League side Zenit St. Petersburg for winning all 3 domestic honours and been named the competition's best player and been the top scorer once each. He was transferred to Shanghai SIPG in 2016.
और आज ही श्यामा चरण दुबे की भी जयंती है। वे भारतीय समाज शास्त्री और साहित्यकार थे। उन्हें एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है। वे साहसिक और मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सदस्य रहकर उन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करवाया। वर्ष 1993 में उन्हें उनकी कृति परंपरा और इतिहास बोध के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया।
वाल्टर एंड्रू ब्रेनन वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1894। ही वाज एन अमेरिकन एक्टर एंड सिंगर। ही वन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर कम एंड गेट इट, केंटकी एंड द वेस्टर्नर, मेकिंग हिम वन ऑफ द ओनली 7 एक्टर्स टू विन मोर देन 2 एकेडमी अवार्ड्स and the only male or female actor to win 3 awards in the supporting actor category. Brennan was also nominated for his performance in Sergeant York. Other noteworthy performances were in To Have and Have Not, My Darling Clementine, Red River, Rio Bravo, and on television he starred in the sitcom The Real McCoys.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।